पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। एक बार एक उदासी संत महात्मा रमेश चंद्र जी महाराज पिलखुआ पधारे। आपने अपने सदुपदेश में कहा कि मुझे साधु बेला के संत की आज्ञा है कि तुम जहां भी जाओ सभी जगह मेरी यह कहानी कि मैंने कैसे कैसे घोर पाप किया और उसका कैसे कैसे फल भोगा सबको सुनाना चाहिए, और मेरी ओर से चेतावनी देना चाहिए कि झूठ से, छल से, बेईमानी से किसी को लूट मार कर रुपए कमाने वाले लोगों, याद रखो तुम्हें यह धन यहीं पर छोड़ जाना है, साथ नहीं ले जाना है। मेरे नारायण के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, न्याय है, अन्याय नहीं है। वह जैसे को तैसा फल अवश्य देता है और जिसका लिया है उसकी पाई पाई चुकानी पड़ती है। साधु बेला के उन संत जी ने उनको बताया था कि मैं गृहस्थाश्रम में था, मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी थी, मेरे कोई संतान नहीं थी, मैं बड़ा चिंतित रहता था। भगवान की मुझ पर कृपा हुई कि मुझे एक साथी मिला जिसने मुझसे कहा कि रुपए तो मैं ला दूंगा और हम तो मिलकर हिस्सेदारी में दुकान कर लें। मैं तैयार हो गया, हम दोनों ने मिलकर दुकान का काम प्रारंभ कर दिया। नारायण की ऐसी कृपा हुई कि हमने बंबई में रुई की गांठें खरीदी, उसमें हमें उस जमाने में 1,00,000 रुपए का फायदा हुआ। बंबई से हमारे पास तार आया कि तुम अपने 1,00,000 रुपए ले जाओ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, हम दोनों बंबई रुपया लेने चले गए। बंबई पहुंचकर हम दोनों एक होटल में ठहरे और दिन भर बंबई की सैर सपाटी की। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि अभी 2-3 दिन और ठहरेंगे, बंबई आए हैं, खूब सैर कर लें। इतने दिन तक पैसा नहीं था, बड़ी तंगी देखी थी, आज पहली बार पैसा मिला है तो सैर सपाटा करें। रोज रोज यहाँ थोड़ी आना होता है। हमने 2-3 दिन बंबई की खूब सैर की, खूब घूमे, खूब देखा। हमने जाकर 1,00,000 रुपए ले लिए और होटल में आ गए। अब मेरे मन में पाप आया, मैंने सोचा कि यदि इस साथी को मार दिया जाए तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। मैंने उसे मार डालने का निश्चय किया और रात में होटल के कमरे से नीचे उतरा और बाजार में चुपचाप चला गया। और वहाँ मैंने जहर खरीद लिया और उसे दूध में घोलकर पिला दिया। बेचारे साथी ने पी लिया। उसे मेरे मन के पाप का थोड़ा ही पता था। रात में उसकी मृत्यु हो गई। मैं प्रातःकाल जाकर किराए पर एक कार ले आया और मरे हुए साथी को बीमार बताकर कार में लाकर लिटा दिया और कार को मैं सीधा समुद्र के किनारे ले गया। कार वाले को 100 रुपए देकर चलता बना दिया और उस मरे हुए साथी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब मैं आनंद से 1,00,000 रुपए लेकर खुशी मनाता हुआ घर लौट आया। मेरे आने का समाचार मेरे हिस्सेदार के घर वालों को मालूम हुआ। वो दौड़े दौड़े आए और बोले, सेठ जी, सेठ जी, हमारा आदमी आपके साथ बंबई गया था, उसे कहाँ छोड़ आए, उनको साथ में नहीं लाए, क्या बात हुई? मैंने झूठ मूठ रोना आरंभ किया और बड़े दुख भरे शब्दों में शोक प्रकट करते हुए कहा कि भाई, उसे बंबई ले गए, उसको हैजा हो गया, उसको बार बार कह हुई और वो वहीं पर मर गया। मैंने उन्हें 8-10 हज़ार रुपये भी दे दिए और उनको मेरी बात पर विश्वास हो गया और मैं मन में खूब खुश हो गया। मुझे 8-10 हज़ार रुपये देने के कारण पूरा ईमानदार और धर्मात्मा समझ लिया। उन्हें मेरे पापों का क्या पता था कि इसने हमारे आदमी को मार ही डाला है और 40,000 रुपये भी हड़प लिए। उन्होंने तो 10,000 रुपये पा करके मुझ पापी को धर्मात्मा दानी जाने क्या क्या समझ लिया। मैं आनंद में रहने लगा। अब मेरे चैन की बंसी बजने लगी। मेरे संतान नहीं था। 1 वर्ष के बाद मेरे पुत्र हुआ। अब तो मैं बड़ा ही प्रसन्न हो गया और मेरे मन ही मन में कहा कि वाह, ये देखो पैसा भी नहीं था, मारा करा पैसा भी हो गया और ये संतान भी हमको मिल गई। बड़ा अच्छा काम किया मैंने। मेरे पास रुपए भी खूब हो गए, मेरे लड़का भी हो गया। अब लड़के को खूब लाड प्यार से खिलाता था, सुख के दिन बिताने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, अब उसकी पढ़ाई शुरू हुई और अंत में उस लड़के ने कहा कि मैं तो इंग्लैंड में जाकर बहुत बड़ी पढ़ाई करूंगा। तो मैंने उसको इंग्लैंड में भेज दिया। लड़का अब विवाह के योग्य हो गया, इंग्लैंड पढ़ने लगा। इस बात की चारों तरफ धूम मच गई। बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग उसकी शादी के लिए आने लगे। कोई 20,000 रुपये की देने की बात करता है तो कोई 50,000 देने की बात कहता है। अब उन दिनों में मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कुछ भी हो जाए 1,00,000 रुपये तो सगाई में मिलेंगे ही। मैं फूला नहीं समाया। बाकी के विवाह में अलग लेंगे। अब लड़का विलायत से पढ़कर आया। एक दिन वह रात में सिनेमा देखने गया, वही लड़का, और रात में ही बुखार हो गया। मैं बहुत घबराया। मैंने उस रात बहुत बड़े डॉक्टर को बुलवाया और दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी चिंता की कोई बात नहीं है, ये रात रात जगा है, न सोने के कारण से बुखार आ गया, उतर जाएगा। उसने दवाई दी, वो चला गया। फिर सुबह देखा तो 104 डिग्री बुखार। अब तो मेरे पसीने छूट गए, बहुत घबराया। उसके बाद थोड़ी देर में 106 डिग्री बुखार। मेरा तो होश गुम हो गया। मैंने शहर के बड़े बड़े प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाया और लड़के को दिखाया। सब ने लड़के को देखा। मैंने उन्हें 500-500 रुपये दिखाई के दिए। सब ने देखकर निश्चय किया और मुझसे कहा कि सेठ जी चाहे कितना ही उपाय कर लो, अब ये लड़का बचेगा ही नहीं, इसे तो क्षय रोग हो गया है। मैं घबराया, रोने लगा, डॉक्टरों के सामने चीख चीख कर कहने लगा, चाहे जितना ही रुपया खर्च हो जाए हमें चिंता नहीं है, मेरे लड़के को बचा लो। डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि एक उपाय है कि इसको स्विट्जरलैंड ले जाओ और वहाँ इसका इलाज कराओ और वहाँ बच जाएगा तो बच जाए, और तो कोई उपाय नहीं है। मैं फटाफट अपना काम करके स्विट्जरलैंड ले गया और वहाँ उसका इलाज होने लगा। अब न तो वो मरे न वो जिए। वहां 1 वर्ष तक रहकर लड़के के इलाज में रुपया लुटाता रहा और अंत में 1 वर्ष के बाद वहां के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हारा लड़का कुछ ही दिन का है, जिएगा नहीं, मरेगा, बचेगा ही नहीं। तुम चाहो तो मरने पर यहीं फूंक दो, चाहे अपने देश में ले जाओ। मैंने माथा पीटना, रोना धोना और जो है चालू कर दिया। फिर लड़के को अपने शहर लाया। घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को पता चला तो सभी लोग देखने आए, मिलने आए। लोकाचार से सब ने अपना अपना व्यवहार निभाया। अब मृत्यु का समय आया। मैं 2 घंटे पहले रोता धोता सिर पीटता लड़के के पास आया और उसके पास मुंह करके आवाज देकर कहा कि बेटा जरा आँख तो खोल दे, एक बार मुझसे बात तो कर ले, उसने मेरी आवाज सुनकर एकदम आंखें खोल दी और हंसा। एक तरफ लड़का तो मृत्यु के मुंह में जा रहा है, दूसरी तरफ वो हंस रहा है, मेरे मन का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा कि बेटा मेरा तो शरीर रोते रोते कैसा हो गया, तू हंसता है, क्यों हंसता है, तेरे हंसने का कारण क्या है। लड़के ने कहा पिताजी तुमने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी और गहरी दृष्टि से तो देखो, मुझे पहचानो कि मैं तुम्हारा वही हिस्सेदार हूँ जिसे तुमने धोखे से बंबई में जहर देकर मार डाला था। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ, मैंने आपका सारा रुपया पाई प्याई पाई पाई ब्याज समेत उतरवा लिया है, अब तुम्हारे पास मेरे रुपयों में से 500 रुपया बचा है जो मेरे को जलाने में आपको खर्च करना ही पड़ेगा। लो जयराम जी की, मैं तुमसे विदा होता हूँ और जाता हूँ, लूट लो अब तुम हमको और मार करके पैसा कर लो। ऐसा करके उसने प्राण त्याग दिए। मैंने जब गहरी दृष्टि से देखा तो उसका चेहरा उस हिस्सेदार की सूरत से मिल रहा था। मैंने रोते धोते उस लड़के को ले जाकर अंत्येष्टि क्रिया की और मैं तो उस मसान के बाद वापस घर ही नहीं आया और मसान के बाद जंगलों में घूमता रहा, रास्ता ले लिया दूसरा ही। और मैंने कहा हे भगवान बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, मुझे ऐसा बनाया, ऐसा फकीर बनाया ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि देखो मैंने बुरा किया और बुरा मैंने पाया, जीता जागता बैठा हूं। अभी तो क्या हुआ है, अभी न जाने मुझे क्या क्या भोगना पड़ेगा। आप लोगों को सावधान करता हूं कि भाई बुरे पाप का फल बहुत बुरा होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। इस क्या बुरे कर्म करने वाले, पाप की कमाई करने वाले लोगों को इस सत्य घटना को सुनकर कुछ तो आंख खोलनी चाहिए।
नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीवर रामचंद्र की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय।